Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Acharya Swami Sri Bhagavatanandaji Saraswati Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Param Premaspad Sruta Sarvyapinamatmanam Shire sarpimivarpitam Sarvyapinamatmanam Shire sarpimivarpitam Atmavidya tapomulam Tadbrahmaupo chintanam Tadbrahmaupanishatparam
तद्ब्रह्मोपनिषत्परम्
देखो अब ये श्लोक तो बहुत साधारण लगता है. सर्वव्यापी का अर्थ जरा समझ लो. सत्येन तपसा पहले आया था तो सर्व सत्येन तपसा का पहले अर्थ कर लो. सत्य माने त्रिकालाबाधितम सत्यत्वम. त्रिकाल में भूत भविष्य वर्तमान में जिसका बाध न हो सके. बाध माने जैसे पानी चला जा रहा है पूरब की ओर और पूरब की ओर पश्चिम की ओर करना है पूरब की ओर बांधना है तो बांध बांध दे वहां जैसे चल न पाए तो उसी को बाध कहते हैं. बांध बांधने को बाध कहते हैं. जैसे ठूंठ दिखाई दे रहा है और ठूंठ में है वास्तव में ठूंठ अभूत दिख रहा है और डर रहे हैं तो वास्तव में वो बाध हो जाएगा उसका उसको बाध बोलते हैं. तो भूत न दिखाई गए ठूंठ दिखाई देगा. रस्सी में सांप का भ्रम हुआ तो सांप न दिखाई दे रस्सी दिखाई दे इसको बाध कहते हैं. सर्प को बाध हो गया इसको बाध कहते हैं. तो सत्येन तपसा मूलम का अर्थ है सत्य बोलना चाहिए सत्य का आदर करना चाहिए. सत्य वस्तु त्रिकालाबाधित होती है. भूत भविष्य वर्तमान में उसे कोई बाध नहीं सकता. जैसे मैं ब्राह्मण हूं ये अभिमान हो जाता है ब्राह्मणत्व का. तो मैं ब्राह्मण तो हूं कि मनुष्य हूं. मनुष्य पहले हूं बाद में ब्राह्मण हूं. तो मनुष्य हूं से कहने से ब्राह्मण का कट गया बाद हो गया. इसी को बाद बोलते हैं. त्रिकाल में जो भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी बाद ना हो सके उसको कहते हैं सत्य. सत्य बोलना चाहिए सत्य व्यवहार करना चाहिए सत्य के एक दूसरे के साथ भी व्यवहार करना चाहिए. सत्य बहुत बड़ी चीज है. सत्य और ईमानदारी से काम करना चाहिए. सत्य और तपस्या माने होता है सत्य और तप ये मूल हैं. सत्य और तप मूल है माने जड़ रोटेशन यूं कहिए जड़ मूल है. सत्य तपसा तपसा माने तप आलोचने धातु से बना है. सहन करना जिसको कहते हैं सर्दी सहन करो गर्मी सहन करो अपमान सहन करो हानि भी सहन करो माने सृजन संबंधी कोई मर गया तो सहन करो इसी को तपस्या कहते हैं. ये मूल में है. कहते हैं सत्येन तपसा मूलम. सत्य और तपस्या मूल में है. तपस्या मन सहन शक्ति. अच्छा मन सहन न करो तो क्या कर लोगे ईश्वर से मुकदमा लड़ोगे क्या करोगे. मन सहन ही करनी पड़ेगी. आज नहीं कल कल नहीं परसों दो दिन 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 धीरे 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 वो शोक कम हो जाता है. भूत का शोक भविष्य का भय ये मन को परेशान करता रहता है. वर्तमान में तो रहना ही नहीं चाहता. वर्तमान में जो भी मिला है उसमें संतोष नहीं होता है. इसलिए व्यक्ति बड़बड़ाता है इधर उधर दौड़ता है कि शायद इसमें शांति मिल जाए, इसमें क्रांति दूर हो जाए, इसमें शांति मिल जाए, ये दौड़े दौड़े घूमता है लेकिन मिलता नहीं शांति। जब नहीं मिलती है तब इंद्रियों से भीख मांगने लगता है, इंद्रियों से भी तृप्ति नहीं होती है। जैसे देवहूती माता जी कहती हैं कपिल से कि नितराम निर्णाम भूमम, हे भूमन मैं इंद्रियों से परेशान हो गई हूं, क्यों? इनके लिए बहुत खुराक दी, आंख के लिए रूप दिया, कान के लिए शब्द दिया, जीभ के लिए मिठाई दी, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ये तृप्त नहीं हो सकी। तृप्ति तो उसमें होती है जैसे मूली खा लो तो डकार मूली की आती है, ऐसे जब मुंह खुले तो सत्य ही निकले, प्रणत निकले, प्रपंच विस्मृति निकले, प्रणाम निकले, प्रवचन प्रिय वचन निकले, अनुद्वेग कर्म वाक्यम न निकले, तो तब समझना चाहिए आत्मतुष्टि हो गई। आत्मरति, आत्मतुष्टि और आत्मतृप्ति एक ही होनी चाहिए। तृप्ति रति और प्रीति, रति माने प्रीति और तुष्टि माने संतोष और तृप्ति माने भरपूर। तृप्ति हो गई माने तृप्त हो गए, अब नहीं जरूरत है। ए न श्रुतम न श्रुतम भवती, जिनको सुन करके सुनना और कुछ रह न जाए, जिसको जानने से और कुछ जानना रह जाए। इसमें विज्ञाते सती सर्वम ज्ञातम भवती, जिसके जानने मात्र से सब कुछ जाना जा सकता है, सब कुछ सुना जा सकता है, सब कुछ पढ़ा जा सकता है, जिन सबका अनुशीलन किया जा सकता है, वो सत्य वस्तु है। सत्येन तपसा, और तपस्या माने आपने सुन ही दिया, तपस्या माने तप आलोचने है, सहन करना, थोड़ी सर्दी सहन करो, थोड़ी गर्मी सहन करो, थोड़ा अपमान भी सहन करो, थोड़ा वियोग भी सहन करो, इसको कहते हैं तपस्या। तो ये मूल में है, इसके बाद तब छीरे सर्प की तरह, सर्पी की तरह ढूंढो, दूध में घी खोजना पड़ता है। कल मैंने बताया था कोल्हू में जब पेरा जाता है तिल, तब तेल निकलता है। ऐसे शरीर को पेरा है, शरीर को कष्ट देना चाहिए, थोड़ा बहुत कष्ट हो भी तो ये समझना चाहिए हमें घी निकलेगा, तेल निकलेगा। जैसे सर्पी का दूध में मथानी डाली जाती है और मथानी देर तक मंथन होता है, फिर गर्म पानी साइड डालते हैं, जम जाता है ना, वो जम जाता है माने अज्ञान के अविद्या के कारण वो गाढ़ा हो जाता है, फिर उसमें गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी डालते रहे और रही चलाते जाते हैं तो मथन निकल जाता है, नहीं तो माखन न निकले अगर गर्म पानी न डाले जाए। तो ऐसे ही जड़ता जम जाती है, अभ्यास से जन्म भर से हमारा अभ्यास ऐसा रहा, जड़ता में ही सोए, जड़ता में ही जगे, जड़ता में काम किया व्यवहार किया, तो जड़ता आ गई, जड़ता के साथ चिपक गए, जड़ता के साथ तादाद कर लिया, जड़ता के साथ हम रहे, घेरे मिले, तो जड़ता हो गई। तब उसमें गर्म पानी डालना चाहिए। गर्म पानी क्या है? अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि के उपाय करना चाहिए। अंतःकरण, अब आप सुन रहे थे, अंतःकरण शुद्ध हुए बिना कुछ काम नहीं चलता, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। और सर्वव्यापिन में, सर्वव्यापी तो विष्णु है, तत्पद है, और आत्मा त्वपद है, इसलिए वहां वाक्य है सर्वव्यापिनी तत्पदार्थ और आत्मा त्वम पदार्थ है, और दोनों का एक कर दिया। छीरे सत्यगुण प्रधान है सर्फिर। देखो ये सच्चिदानंद ने कहा है सर्पी में घी में जो जो दूध है वो सफेद होता है, तो स्वेतिमा हो गई सत, और उनमें चमकीलापन भी दूध में होता है, वो हो गया चिद, और स्वाद बढ़िया आता है, अब क्या स्वाद आता, वो प्रिय हो गया, सत्य प्रिय हो गया सच्चिदानंद, दूध सच्चिदानंद हो गया, सच्चिदानंद में फिर सर्पी निकालो घी तो वो भी सच्चिदानंद होगा। सच्चिदानंद में से जो घी निकालोगे वो भी घी सच्चिदानंद होगा, क्यों सच्चिदानंद में से निकालना है ना, तो स्वेतिमा उसकी हो गई सत, और उसमें चमकीलापन हो गया चिद, और जो स्वाद में अच्छा लगा हो गया आनंद, तो सच्चिदानंद दूध हो गया। तो दूध को जब मथानी रही डाली गई, दूध से दही बना, दही से तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई जो हरि कृपा हृदय बसाई, यहां से लेकर के उन्होंने पूरा रूपक दिया है, बड़ा अच्छा दिया। भाव वत्स बिजपाय पिन्हाई, धर्म को दूध बताया, और नोई निवृत्त पात विश्वासा निर्मल मन हीर निज दासा, ऐसे उन्होंने सब पूरा वर्णन किया। तो क्षीरे सर्प निवारितम है, जैसे दूध में घी निकलता है, तो कैसे घी निकलता है, दूध और क्षीर और घी ये दोनों पार्थो हैं, पार्थो माने जो आग से जले ना, और वो जो जल जाता है वो पार्थो होता है, दूध भी जल जाता है घी भी जल जाता है, और सोना नहीं जलता है, सोना इनका मतलब पार्थो नहीं है, वो तेज है तब न जलता है, और घी जल जाता है दूध भी जल जाता है, दूध भी तो कभी कभी ऐसा होता है कि गैस पे रख दिया अपने कुछ काम धंधा में लग गई तो वो जल जाता है दूध, फिर उसकी गंध आती है सब जगह फैल जाती है, अरे भाई गंध आई दूध गल जल गया, तो दूध जल जाता है, इसका मतलब है कि दूध पार्थो है और घी भी पार्थो है, और स्वर्ण तेजस है वो नहीं जलता है, वो और तपता है लाल हो जाता है। तो जैसे घी बताया, सो घी को बुद्धि से देखो, बुद्धि से देखो, कैसे देखो कि देखो क्या है, दूध में भी तो हम आंख से ही देखते हैं, बुद्धि से देखें तो घी दिखाई दे। ऐसे व्याकरण में एक नियम है कि दूध है मुख में और अर्थ है बुद्धि में या हृदय में, अर्थ है बुद्धि में, आकार है हृदय में, जैसे राम कहा है राम तो मुंह से राम निकलेगा और अर्थ निकलेगा बुद्धि में, राम माने अग्निबीज है पाप को जलाने वाला, और आ माने सूर्य अनुशासन करने वाला प्रिय है, और निकला राम माँ, माँ चंद्रमा है आह्लादक है, तो लंका और अयोध्या और जनकपुर, ये अर्थ बुद्धि में आया कि लंका में भगवान जलाते हैं दाह करते हैं अनुशासन करते हैं अयोध्या में, और जनकपुर में आनंद देते हैं, ये तो आप बुद्धि में अर्थ लगा, लेकिन आकार हृदय में आ जाएगा, आकार राम का आ जाएगा, धनुष बाण लिए हैं और ऐसे 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 हैं राम जी, तो हृदय में आ जाएगा। तो वस्तु धरती में होती है हृदय में होती है, और मुख में शब्द होता है हृदय में अर्थ होता है, ये व्याकरण का नियम है। तो ऐसे घी लगाओ, घी लगाओ तो दूध शब्द आया मुख में, दूध मुख में, और अर्थ उसका कि दूध में घी है, ये बुद्धि में आया और हृदय में आकार आ गया, दूध मिलना चाहिए, ये मत है। अच्छा, अब सर्वव्यापिन का अर्थ कर लो, सत्येन तपसा मूलम, अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या क्यों बताएगी, ब्रह्म विद्या है, उससे अज्ञान अविद्या निवृत्त होती है। तो सर्वव्यापी तीन प्रकार का होता है, एक तो लोहे में अग्नि, आग का गोला लाल लाल हो जाता है, तो आग में गोला की तरह संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर है, परमात्मा है, ऐसा माने क्या? तो बोले आग अलग है और गोला अलग है, लोहे का वो पार्थिव है, तो क्या ऐसा है परमात्मा अलग हो जाता है क्या ब्रह्मांड बना के? ब्रह्मांड से अलग है परमात्मा क्या? कैसे आग का गोला तो अलग है, तो सर्वव्यापिनम कैसे कहते हो सर्वव्यापिनम? तो कहते हैं इसीलिए तो कहा देवम निगूढ़वत प्रसेद, देवम निगूढ़वत, छिपे हुए की तरह देखो। तो भाई ये नहीं बना। तो दूसरा उदाहरण दिया कि अच्छा तो समुद्र में जैसे तरंगे हैं, ये मान लो समुद्र में तरंगे होती हैं, गंगा जी में, गंगा जल में, गंगा जी में तरंगे होती हैं, तो तरंगों का जल भी वैसे ही होता है, तो कारण कार्य मान लो। और तीसरा उदाहरण रस्सी में सर्प दिया, तीन उदाहरण दिए, रस्सी में सर्प और लोहे में आग और चिंगारी में आग, जैसे आग में चिंगारियां निकलती हैं, एक उदाहरण और रह गया, चिंगारी में आग निकलती ना। अच्छा, मिट्टी में घड़ा, तो कौन मानोगे आप? वेदांती लोग तो रस्सी में सांप मानते हैं। व्यापी का अर्थ का है सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है विष्णु, बेविस्थित विष्णु बनता है, माने सब जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, तो लोहे में आग की तरह व्याप्त है कि मिट्टी में घड़ा की तरह व्याप्त है कि रस्सी में सर्प की तरह व्याप्त है कि समुद्र में तरंगों की तरह व्याप्त है, कैसे व्याप्त है? ये सर्वव्यापिन का अर्थ करा है, सर्वव्यापी है विष्णु तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि कैसे व्याप्त है? अगर मान लो लोहे में आग की तरह व्याप्त है, तो लोहे में तो उतना लोहा जितना गर्म किया जाएगा उतना लोहा होगा, और लोहा दूसरा है और आग दूसरी चीज है, आग लाई जाएगी तब लोहा गर्म होगा, लाल हो जाता है एकदम, तो क्या इसी तरह से परमात्मा है? अन्य परमात्मा होए, अन्य कोई ब्रह्मांड होए, तो बोले ये तो नहीं है। तो फिर मिट्टी में घड़ा, घड़ा तो मिट्टी है ही है, घट ही मिट्टी है, ऐसे नहीं कह सकते मिट्टी ही घट है, ऐसे कह सकते मिट्टी ही घट है, मिट्टी में संपूर्ण मिट्टी में घड़ा बना हुआ है, तो क्या ऐसे है क्या व्यापी? को बोले व्यापी अर्थ ये नहीं लगेगा, क्यों कि घर में घड़ा में मिट्टी बनाई जाती है और मिट्टी लगाई जाती है, मिट्टी सब पूरे घड़ा में है ये मानते हैं, लेकिन मिट्टी की जगह सुराही भी तो होती है, वो भी तो मिट्टी की बनी होती है, तो इससे ये तो कह सकते हो मिट्टी ही घट है, लेकिन घट ही मिट्टी है ये तो नहीं कह सकते ना, और भी तालाब में मिट्टी है, तो कहा ऐसे ब्रह्मांड है? तो कहा ना ऐसे नहीं है, क्यों परमात्मा अलग होए और ब्रह्मांड अलग होए ऐसा तो नहीं है। कुम्हार मर जाए तो घड़ा का कुछ नहीं बिगड़ता है, घड़ा फूट जाए तो कुम्हार का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे परमात्मा तो नहीं हो सकता। तो कैसे है भाई आप बताओ? जल तरंगवत है क्या? कहा कि जल तरंग, जल में तो तरंगें दिखाई देती हैं और जल ही तरंग बन जाता है, जल ही तरंग बन जाता है, तो आग में चिंगारी की तरह होगा, तो रस्सी में सर्प की तरह, रस्सी में सर्प व्यावर्त होता है, इसको व्यावर्त बोलते हैं या विवर्ती उपादान कारण। विवर्ती माने विपरीत वर्तनम इति विपरीता, विपरीत वर्तन होए तो व्यावर्त कहलाता, विवर्त। विपरीत कैसे, जैसे रस्सी है और रस्सी में दिखाई दे रही रस्सी नहीं दिखाई देती, सर्प दिखाई देता तो भ्रांति हो जाती है। भ्रांति क्या होती है कि सर्प है, आए ले आओ लाठी डंडा, ले आओ लाठी डंडा लेके आए, अब पहले देख तो ले किस प्रकार का सांप है, अभी देखने लगे तब तक कोई टार्च ले आया, टार्च देखी तो रस्सी रस्सी है। ऐसे ही ब्रह्मांड में परमात्मा है, परमात्मा ही अकेला है, वहां भ्रांति से दिखाई देता है नाम रूप जगत। और वैष्णव लोग क्या मानते हैं, नाम रूप में जगत परिणमित हो गया परमात्मा, इतना बस अंतर है। वैष्णव लोग कहते हैं कि परमात्मा विकार नहीं है, अविकृत परिणामवादी है, माने परमात्मा ही बदल के नाम रूप में हो गया है। है सिया राम में सब जग जानी, करो विचार जोर कर पानी, है ना। तो जैसे परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही नाम रूप में दिखाई दे रहा है, गाय में, गधा में, ऊंट में, मनुष्य में, सब में परमात्मा ही है नाम रूप में, इतना अंतर है। और ये कहते भ्रांतवश दिखाई देता है, ये वास्तव में नहीं है, नहीं तो वो भी विकार हो जाए, विकारी तो हो जाएगा कार्य कारण, कार्य जब विकारी होगा तो कारण भी विकारी हो जाएगा।